તારીખ 7/4/1991 શ્રી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 486 489 490 500 અને 502 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 46
दूसरे लड्डू पर तीसरे में तो कहेंगे नहीं नहीं अब तो दुख होता है वॉमिट हो जाएगा ये हो जाएगा वास्तविकता पर आना पड़ता है बाद में हम समझे इसलिए पहले से समझे तो क्या तक
थकान तो आती है भगवान की भक्ति करते हैं पूजा करते हैं उसमें थकान तो आती
है तो रस आया
फिर थकान आई
फिर क्यों बंद कर दिया अरे भगवान की भक्ति में आपको शांति लगी आप कहेंगे हमको तो शांति लगी इसलिए हमने भक्ति करी तो शांति बढ़ाते जाओ ना क्यों बंद करते हो शांति का
शांति चाहिए शांति तो चाहिए शांति बढ़ाना चाहिए
शांति को बढ़ाते जाओ आधा घंटा में जो शांति हुई एक घंटा में दुगुनी हो जाएगी तीन घंटा में छह गुनी हो जाएगी लेकिन एक घंटा के बाद तो छोड़ने का विचार आता है क्यों थी नहीं शांति कल्पना कर ली कल्पना कहां तक टिकेगी वास्तविकता के आगे कल्पना तो टिकने वाली है ही नहीं युक्ति से समझते हैं तब अनुभव से समझना है युक्ति से तो समझते हैं तो अनुभव से समझे और अनुभव को दूसरा आत्मा में थोड़ा हो रहा है हमारी आत्मा में हो रहा है समझ सकता है
चार सौ छियासी स्पष्टीकरण ये तो बड़ा देव गुरु शास्त्र में मिथ्यात्व की पुष्टि वाला है अब इसको इस पर स्पष्टीकरण दिया है थोड़ा
देव गुरु शास्त्र मिलना पुण्य का उदय
मिलना पुण्य का उदय और एकत्व परिणाम शुभ भाव में करना कि हमें मिला हमारा भाग्य से हमें देव गुरु शास्त्र मिल गया तो एकत्व कर लेना वो मिथ्यात्व की पुष्टि है
संतोष होना अच्छा
एकत्व परिणाम कर लेना मिथ्यात्व भाव से यही मिथ्यात्व की पुष्टि है देव शास्त्र गुरु देव शास्त्र गुरु वास्तव में तो भेद ज्ञान के निमित्त है क्या है कि वास्तव में जो वितरागी देव गुरु शास्त्र है वो भेद ज्ञान के निमित्त है हम बनाते हैं सिर्फ शुभ भाव के निमित्त पहली तो हमारी गलती वहां है कि जो भेद ज्ञान के निमित्त है वो तो भेद ज्ञान में निमित्त नहीं करके शुभ भाव में निमित्त बना लिया रास्ता तो उल्टा पकड़ा और फिर ये बात आएगी कि मिथ्यात्व की पुष्टि हो रही है तो हमको धक्का लगता है हमको दुख लगता है देवगुरु शास्त्र को सच्चा मिले उसको मिथ्यात्व के वितरागी भगवान को मिथ्यात्व की पुष्टि में निमित्त कर दिया ये बात कैसे होती है लेकिन हमको वेद ज्ञान का निमित्त को हमने स्वभाव का निमित्त बना लिया ये गुण नहीं किया क्या इसको तुम विज्ञान क्यों नहीं करते विज्ञान का प्रयास क्यों नहीं करते अकेले स्वभाव में क्यों रहते फिर हमको दुख लगता है इसकी कीमत हम बहुत आंकते हैं भगवान का इतना भाव से दर्शन किया भगवान का इतना भाव से दर्शन कर लिया बहुत भाव आया तो भगवान का दर्शन करने में बहुत भाव हमको हमारे भाव की महत्ता इसमें बहुत आती है भगवान की नहीं आती है भाव की आई हमारे भाव की आती है फिर इसको कोई उड़ाता है ज्ञानी तो हमको दुख लगता है तो इतना हमारा अच्छा परिणाम होता है जैसे सखिया जी का गुणानुवाद भगवान के करते हैं हमारा आत्मा का गुणानुवाद साथ साथ कीमत तो बहुत दे दी और कह दिया कि उसमें आकुलता तीव्र आकुलता है तो ऐसा एक बात बना था कि
दो मित्र थे उसमें एक का मृत्यु हो गई, इसका मृत्यु हो गई तो इसका जो लड़का था वो अपने पिताजी के जो मित्र से इनके पास गया, बोला कि बाबू जी हमारा पिताजी तो काफी हमारे पिताजी के स्थान पे तो है बराबर, तो हमारी स्थिति कुछ कमजोर हो गई है आर्थिक स्थिति, और हमारे घर में जो एक हीरा का हार है तो आप भी जगह ज्वेलरी है तो या तो उस पर हम उसको बेच दें तो हमारे कुछ कठिनाइयां दूर हो जाए, या तो आप गिर गिर तो हमें कुछ इस पर अच्छी रकम दे दो तो हम जो व्यापार कारोबार है उसमें लगा दें, कमाई का साधन बता रहे थे, तो निकम्मी कोई चीज पड़ी है, हम इन दिनों में इसको हम पहनेंगे तो कोई मानेंगे नहीं, ये तो गरीब है इनसे इसके पास इतना कहाँ बड़ा चीज आया, तो देखा देखा और बोला कि तुझे न बेचने की जरूरत है न गिरवी रखने की जरूरत है तो अपने पास रख तो ले जाते घर पे तुझे तो मैं बंद कर दे उसको, तो तुझे पैसे की जरूरत है ना करने में ले जा मेरे से, लेकिन क्या धंधा करना है, तो आपका जैसा ही करना है, मुझे भी जवेरात का धंधा करना है, तो सीखा तो नहीं है ऐसा कर दो, खर्चे का कोई तो कोई तकलीफ नहीं है, आपका खर्चे का पैसा तो मेरे से ले लेना, लेकिन तो मेरी दुकान पर बैठ जाए और तो सूख लो धंधा, फिर जब धंधा सूख जाएगा मैं तुझे तेरी दुकान चालू करवा दूंगा, पैसा दे दूंगा धन व्यापार करने के लिए, नहीं तो पहले सीख लो फिर धंधा करेगा, तो ठीक है जब उसको खर्चे की चिंता नहीं वो सीखने लगा, तो सीखने लगा और सीख गया वो मीरा को देखने, तब उसको पता चल गया कभी लड़का तो तैयार हो गया है, तब उसको बोला कि तेरे घर पे जो हीरे का हार पड़ा है अब तो तुम इसका मूल्यांकन कर ले, अगर तुझे बेचना है और उसको बेच करके उस पूंजी को जो पैसे आएंगे उसको धंधा में लगाना है अब तेरे को मैं इजाजत देता हूँ, तो उसका पहला घर पर मूल्य कर ले फिर बाजार में जाके किसी को बेच, जिसको भी बेचना है यहाँ से पैसा लेकर के तू तेरा धंधा कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अब मैं जो तो घर पे गया तिजोरी में से निकाला, अरे नकली तो हीरे ही नहीं है सब खोटे थे, अगर उस वक्त उसने बोला होता कि तेरे पिताजी ने जो खोटा हार खरीदा था तो उसको धक्का लग जाता, अरे मेरे पिताजी ऐसे खोटा हार खरीदते थे क्या, मेरा पिताजी का मित्र है ना पैसा पूरा नहीं देना चाहता है, वो खोटा खोटा के पैसे में सच्चे माल ले लेना चाहता है, उसको शक हो जाता, तो ये ज्ञान कहते कि तुम पहचान करे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप तो पहचान फिर तुम भक्ति करना, बिना पहचान तो भक्ति करता है तो भक्ति भी अच्छी नहीं आएगी, वो काम नची जाने वाले पहचान लिया तो फिर बेदियां में बिठा जाएगा,
ये पॉइंट खेलता है जो सुधार जो शुद्धता में
मिथ्या में भी निमित्त बना दिया, शुभभाव में तो बनाया साथ साथ मिथ्यात्व में भी निमित्त बनाया, जबकि मिथ्यात्व में निमित्तत्व होने का उसमें कोई धर्म भी नहीं है, देवगुरु शास्त्र में कोई ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा निमित्तत्व रूप धर्म नहीं है कि जो मिथ्यात्व में निमित्त हो गए, हम तो उससे भी आगे चले गए, इसका भी उल्लंघन कर लिया, ऐसे देव शास्त्र गुरु वास्तव में तो वेदज्ञान के निमित्त है, फिर भी जो जीव इस तथ्य से अनभिज्ञ है, अभी देखिए दिगंबर संप्रदाय में वो बात नहीं चलती है कि देव गुरु शास्त्र वेद ज्ञान के निमित्त है वो बात नहीं चल रही है। सुबह उठ के पूजा जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन शुभ भाव में निमित्त बनाते हैं, वो एकत्व वाले शुभ भाव में निमित्त बनाते, वेद ज्ञान में निमित्त नहीं बनने की बात ही प्रचलित नहीं है। काम तो हो ही कैसे, क्या हालत होगी। मैंने लाखों कोष दूर चले गए, तब उनको कहे कि शुभ भाव में तुम ये मिथ्यापत्र की पुष्टि करते हो, मारने लग जाएगा। अरे मारने लग जाएगा, ऐसी बात करते हो, हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना समर्पण किया, इतना मंदिर बनाया, इतना प्रतिष्ठा किया, वो किया वो किया, और सब मिथ्या, ये झगड़ा इसका चल रहा है समाज इस बात का। वह मात्र शुद्ध भाव में एकत्व बुद्धि को दृढ़ करता हुआ परिणमता है, अनभिज्ञ है, इसलिए जिससे उसे आत्महित की जगह उल्टे मिथ्यात्व की ही पुष्टि हो जाती है।
शुभ भाव में एक बात होगी और शुभ भाव में एकत्व होना दूसरी बात होगी,
इसमें दोनों होता है। ये ज्ञानी को शुभ भाव भी आता है लेकिन एकत्व नहीं होता है, और उसमें वो शुद्धता का निमित्त बनाते हैं, स्वरूप का स्मरण करते हैं, स्वरूप को संभालते हैं, सब बात
यदि अचेतन तदपि चेतन को स्वरूप अचेतन
यद्यपि चेतन तदपि
चेतन को चित्त स्वरूप
चित्त स्वरूप दिखलाती है। अच्छा पद बनाया कुछ, जिनेश्वर दास को बनाने वाला अच्छा बना। असल में सुनने आदि का रस कम हो जाना चाहिए, ये तत्व सुनने की बात है, कान यानी असल में सुनने आदि का रस कम हो जाना चाहिए। वह कम कब होगा कि जब अंदर का रस बढ़ता जावे तभी उधर में रस कम होता जाता है। इसलिए शुरू से ही उधर में सुनने आदि में जोर नहीं आना चाहिए, इतना वजन नहीं आना चाहिए, शुरू से ही ये प्रैक्टिस चालू रखना। और स्पष्टीकरण है कि मुमुक्षु जीव को शुद्ध भाव में रस आता है, वह भी विभाव रस ही है, स्वभाव रस तो नहीं है, विभाव रस ही है। सिद्धांत तो यह है कि कहीं भी सुबह शुभ भाव में विभाव रस तीव्र नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत है। अतः ऐसे समझ पूर्वक अत्यंत सावधानी रहने से, समझ पूर्वक बिना समझ नहीं, समझ के साथ अत्यंत सावधानी रहने से, क्यों कि नुकसान है, नुकसान की समझ आई तो नुकसान जहां भी होगा सावधानी आए बिना रहेगी नहीं, जीव का स्वभाव है। अत्यंत सावधानी रहने से उक्त प्रतिबंधक रस तीव्र न होने से अंतर स्वभाव रस उत्पन्न होने का अवकाश बनता है। तीव्र विभाव रस में तो स्वभाव रस उत्पन्न होने की गुंजाइश होती नहीं, शुरू होने की गुंजाइश नहीं, इसलिए अगर रस मत रहा तो स्वभाव रस उत्पन्न होने का अवकाश है। पर वैसे अवकाश में अंतर स्वभाव रस आविर्भूत होने की प्रक्रिया भी संभवित है। अकेला क्रिया का बुरा भक्ति का नहीं लिया, सुनने का भी लिया
है। तब तो सुनने
का तब लिया प्रवृत्ति तो मंदिर फिर खाने के हो या सुनने के कुछ भी हो, ये भी उदय भाव है, सब उदय भाव है, मंदिर से जाना तीव्र रस से जाने से ये स्वभाव रस जो विरुद्ध रस है उसका प्रारंभ उसकी प्रक्रिया होना ये तो जगह ही नहीं रहती।
पद्मनंदी आचार्य से भी तब तीन तीन चित्ते एक वार्ता दूसरा निश्चित रूप से भोज बैठे भागी जगह अच्छा है,
अच्छी बात है। तो इसमें स्वभाव रस वाली बात पद्मनंदी आचार्य कि जिसको आत्म तत्व की वार्ता तत्व का बात आत्म तत्व लेना है तो उसका जिसको स्वभाव रस आता है सुनने में स्वभाव का रस आता है वो उसी वक्त उसको संस्कार पड़ेगा रुचि उस रुचि से उसको स्वरूप के स्वभाव के संस्कार डालेगा और वो निर्माण तत्व होता है। ये हमने समाधान दिया है स्वभाव के रस से और विभाव रस की बात वहां नहीं है,
स्वभाव के रस से सुनने की बात है। स्वभाव के रस से सुनने की बात है
नहीं, स्वभाव स्वभाव का रस जो है वो विभाव रस से विरुद्ध है, मैंने स्वभाव का रस वाली बात वहां नहीं है ऐसी बात।
सुनने का क्या लगना चाहिए
देखिए ज्ञानी है या तीर्थंकर है इनकी वाणी चलती है और आत्म तत्व को वो सुनाता है तो उसमें दो तरह के भाव होते हैं, दो दो प्रकार के उसमें भाव उत्पन्न होने की वहां परिस्थिति बनती है। जिसको मात्र शुभ भाव आता है और उसमें रस आता है वो करने लायक नहीं, पर उसके लिए वो पद बनाया भी नहीं है पद्मनंदी आचार्य। लेकिन जिसको स्वभाव की बात सुनते ही स्वभाव की रुचि और स्वभाव का रस आता है उनको स्वभाव का संस्कार पड़ता है उनको निर्वाण पद आने वाला है, ये बात है।
सामने वाले स्वभाव की बात सुनी
तो अब एक दूसरी बात ले लेना, अब सुनने वाले से बात लिया अब सुनाने वाले से बात ले लें थोड़ा विषय को अधिक स्पष्ट करें कि जैसे गुरुदेव प्रवचन देते थे, जब गुरुदेव प्रवचन देते थे आपके पास तो बहुत टेप है आप सुनते भी कौन है, अब यहां से बात है तो उनके शब्द ले लेने भाव तो भाव है, शब्द वो शब्द है लेकिन शब्द के पीछे भाव क्या है, एक आत्मा है ऐसा रखते थे तो उनके ज्ञान में और तो उनके संधान में पूरा का पूरा आत्मा खड़ा हो जाता है, बहुत रस आता है आत्मा शब्द बोलते हैं आत्मरस आता है, फिर वो नित्यानंद है निर्मलानंद है सहजानंद है चिदानंद है ऐसे उस रस में विभोर होकर के तो दूसरे दूसरे इसमें आत्मरस और आविर्भाव हो जाए ऐसे शब्द निकलते रहते हैं उनके स्क्रीन में, लेकिन उनके भाव में क्या है। अगर सुनने वाले को शब्द का विवश नहीं रहता है और उसके भाव को वो देखते हैं समझते हैं ग्रहण करते हैं निमित्त निमित्त एक शब्द से क्या बात मिलती है कि वहां उसको स्वभाव रस आने लगता है, स्वभाव की रुचि उसकी तेज होती है सतेज होती है उनको अगर संस्कार पड़ गया स्वभाव सुनते स्वभाव की रुचि के काल पर, तो उनको यह भावी निर्माण पद का कारण हो गया। और सुनने वाले को यह पता चलता है, सुनने वाला कुछ बोलता नहीं है, सुनने वाला कुछ नहीं बोलता है, वो तो मौन रूप से सुनता है, सुनाने वाला बोलता है। लेकिन तो सुनने वाले को ये पता चलता है बिना बोले कि इनको मेरी बात में रस आता है, इनको नहीं आता है, उनको आता है, उनको नहीं आता है, चलता है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं चलता है बिना बोले। ये इनर करंट है दो जीव के बीच में, हमेशा रहता है। जहां भी आपस में प्रेम हो, आपस में वैमनस्य हो, ये इनर करंट चलेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये गुरु शिष्य का सुनने सुनाने वाले का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो वहां है, दूसरी जगह नहीं है। भले ही वो सामने देखे सुने सुखा हो नहीं है, ऐसे रुचि वाले जीव को सुनाने में भी सुनाने वाले को रस आता है, क्योंकि सामने रस वाला है, रस से सुनता है। तो और सुनने वाले को रस आता है जब सुनाने वाले को रस होता है। तो अगर सुनाने वाले में रस नहीं है तो सुगानी जी कहेंगे कि हमको तेरी बोली काग पक्षी जैसी, इसलिए बात आई है। तो बहुत बात उन्होंने कही है, ये सब बात फालतू नहीं कही है, धर्म है हर जगह। भले वो आत्मा की बात करता है लेकिन उनको जब अंदर में रस नहीं आता है तो कहेंगे कि तेरी बोली हमको काग पक्षी जैसी। और वैसा ही कलर है कोयल का, कलर से मतलब नहीं है, लेकिन इनकी बोली मीठी लगेगी। देखिए कोयल, देखिए बिल्कुल काग जैसी लगे, उतना ही उसका कद वॉल्यूम भी उतना ही रहता है। गौर से नहीं देखे तो पता नहीं चले कि ये काग है या कोयल है, थोड़ा शेप उसका अलग होता है, बाकी दूर से देखे तो एक सही लगे, बोले तो पता चल जाए। मंदिर से शुद्ध भाव का और सुनते वक्त स्वभाव का तीव्र रस आवे तो उनके लिए तो आचार्य हो गया कि अभी तो सम्यक दर्शन भी उसको नहीं हुआ है, उसको सिक्योरिटी दे दी सिद्ध पद की। कितना उनको अनुमोदन करते हैं या सपोर्ट करते हैं, एक मनुष्य जीव को कितना सफल करते, शुद्धा से सुनते हैं उनको निषेध करते हैं कि विभाव रस निषेध, तो विभाव रस का है, स्वभाव रस का कहीं निषेध नहीं है। आपका प्रश्न है 500 अंगत लिया है, अंगत बात कह दी है कि दूसरे के लिए अगर प्रवृत्ति करना हो तो बुझा हो गया, या मुझे तो सहज की आदत है दूसरे अपने लिए चाहे जैसा भी प्राय बात ले, कोई दरकार नहीं करते, क्योंकि निर्दोष को तो शंका या चिंता नहीं होती रहती, परलक्ष प्रवृत्ति लोकसंग रूप आत्मघाती बड़ा दोष है, ये इसका मर्म है। हम दूसरे की नजर में हमारी छवि अच्छी बनाई रखे, ये लोक संज्ञा है, और ये लोक संज्ञा बड़ा आत्मघाती दोष है।
सबसे कॉमन दोष है
बहुत कॉमन है लोक संज्ञा की चर्चा हमारे नित्य साध्या में बहुत चलती है, क्योंकि धार्मिक काम भी लोग करते हैं, दान देते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते करते हैं, सब में अपनी छवि अच्छी तरह क्लियर समाज में बनी रहे या उभर के बाहर आ जाए, ये अभिप्राय जो है बड़ा आत्मघाती दोष है। ज्ञानियों को ऐसा नहीं होता, कभी तो परवाह नहीं करता, कोई कैसा भी अभिप्राय बांध ले मानने दो, हमें कोई चिंता नहीं। मैंने पदम चंद जी को पकड़ पकड़ के खुलासा किया है। सुख में तो दुख लगता है, लेकिन सुख में तो दुख नहीं लगता है। सुख को ठीक माना है, पूर्वग्रह है, इसलिए दुख नहीं लगता, होश आती है। पहले सुख में ठीक माना था तो वहां भी दुख नहीं लगता था, इधर आत्मा में आवे तो इधर के सुख के अनुभव में शुभ अशुभ दोनों ही दुख दिखेंगे। जैसे मक्खी खिचकरी पर बैठती है, फट से उड़ जाती है, भूल से बैठ गई तो, क्योंकि उनका कलर एक सा है, किंतु शक्कर पर बैठी हो तो भले ही पंख टूट जाए तो भी उठना नहीं चाहती। ऐसा ही यहाँ भी समझ लेना, शुभ अशुभ दोनों में ये दुख है, फिर भी उनमें दुख न लगने का कारण वहां ठीक पढ़ा माना है। अतएव स्वयं के अवलोकन से उक्त प्रकार के भूल निवृत्त करना हो तो शुभ अशुभ भाव में रहा हुआ वास्तविक दुख मालूम पड़ेगा, परंतु इस विषय की समझ को मात्र न्याय युक्ति की मर्यादा में रखना योग्य नहीं है। अवलोकन पद्धति से पद्धति में आना ही श्रेयस्कर है। दुख तो अनुभव की चीज है, विचार की चीज, एक धंधे वाला तो क्या है, जो भी तरफ होती है, तरफ बोलते हैं सोने की, चांदी की, कपड़े की, चाय की, चावल की, तरफ बोलते हैं, तरफ कहां से आई, इसी चीज का परिचय ज्यादा हो गया देखते देखते। जब हमें सुबह सुबह में दुख नहीं लगता तो देखते देखते परिचय तो करो, क्या अनुभव हो रहा है पता चल जाएगा।
एक बात उन्होंने ऐसी प्रश्न हुआ था कि आत्मा के अनुभव में कितनी देर टाइम लगता है जाने में, तो उन्होंने ऐसा फरमाया कि अशुभ में अगर चाहे तो लंबा काल लग जाता है, शुभ में जल्दी जल्दी आ सकता है, किसी को महीने में 10 बार भी आ सकता है, तो शुभ में रहने पर
जल्दी यहाँ पड़ा होता है, सुबह लंबा काल पड़ता है, ऐसा उत्तर भी है।
सुबह जल्दी होता है ना,
जल्दी जल्दी होता है।
तो इसमें क्या है कि शुभ और अशुभ में विभाव रस की तीव्रता होती है कि नहीं? अशुभ में विभाव रस तीव्र होता है, शुभ में विभाव रस मंद होता है। तो रस के फैक्टर तो वहाँ रस का भाव भी वही लागू होता है। तो तीव्र विभाव रस होने से स्वभाव रस उत्पन्न होने का अवकाश नहीं है, और रस मंद होने से स्वभाव रस उत्पन्न होने का अवकाश होता है। लेकिन वो रस का मुद्दे को नहीं समझते हैं, तो शुभ भाव को कारण मान लेते हैं।
शब्द ऐसे नहीं,
हाँ वो तो बात तो तात्विक रूप से समझना चाहिए, उसका तत्व रस से संबंधित है, तत्व का तो रस से संबंधित। अगर शुभ भाव कारण हो जाता तो ज्यादा शुभ भाव करने वाले द्रव्य उत्पन्न होने की प्रक्रिया की संभावना है। सिद्धार्थ तो रस को जो नहीं समझते हैं उसको पता लगता है, रस को समझने से क्या होगा कि अवलोकन में भी अपना रस जब समझ में आएगा, रस का अनुभव समझ में आएगा, आपके 100 प्रश्न में से 99 सुलट जाएगा। पूछना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिना पूछे बिना पढ़े पता चलता।
इसका मतलब आपको तो ये भी निकाल सकते हैं कि धम्य दृष्टि भी स्वभाव में ज्यादा रस रहता है, संरक्षण होने के पश्चात, अनुभूति होने के पश्चात वो भी असुंदर बहुत लंबे काल तक भी चला जाता है।
समय दृष्टि
हाँ
नहीं रहता, रस नहीं है
ना, रस नहीं, लेकिन जितना लंबा काल करता है उसको लंबे काल की वजह से
वो तो
शुद्ध अनुभूति की बात का प्रश्न दिया ना, अनुभूति एक हो जाए तो दोबारा अनुभूति में कितना टाइम लगेगा उसका उत्तर दिया उन्होंने कि अगर अशुभ के काल में जाए तो लंबा भी पड़ सकता
है। तो क्या है कि किसी को उदय भाव में अशुभ लंबा चला तो उसको
मतलब ये हो गया समय स्थिति का अशुभ काल लंबा हो सकता है
काल में ना, तो उदय ऐसा हो सकता है। जैसे रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण जी के मुर्दे को लेकर के घूमे तो उन दिनों में मेरी को पता नहीं आ पाती, आ नहीं सकती, ऐसा कोई उदय आ जाता
तो उदय की अपेक्षा समझिए ये तो उसके वजह से जानबूझ के नहीं है, उदय उदय आ जाए इस प्रकार का,
इस प्रकार का उदय
सुपर नाम
पर उसमें पकड़ रहा तो वहाँ उसमें धोखे माने में देर लगे अवश्य। ये सामान्य रूप से है, विशेष रूप से कोई ज्ञानी ऐसे होते नहीं। भरत चक्रवर्ती और शाम तक को लड़ाई लड़े, शाम को फिर लड़ाई बंद होने के बाद तो बैठ जाए अपने ध्यान में तो निरंतर शुभ होते, विशेषता वाली बात ऐसा भी हो सकता, वो एकांत नहीं सामान्यतया ऐसा बनता है, विशेषतया ऐसा नहीं भी बनता। आत्मा की ताकत बहुत है, शक्ति आत्मा में ज्यादा है, विवाह में इतनी नहीं आता है, कभी भी तोड़ सकता है अंतर बोध। शास्त्र इधर से निकलते हैं आत्मा में से, तो इधर से निकली सब बातें शास्त्र से मिल जाती हैं। शास्त्र देखकर इधर का मिलान नहीं करना, किंतु इधर से निकली बात शास्त्र से मिलान कर लेना।
निशंकता का कैसा प्रकार?
निशंकता का भी प्रकार है, और एक दूसरा क्या होता है कि शास्त्र से देखकर इधर का मिलान करते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं कि अपना अभिप्राय तो कोई गलत बना दिया है, कल्पना हो गई है, फिर शास्त्र के बात
देख कर मिलान करता है। तो शास्त्र की बात तो कोई दूसरी होती है, लेकिन वो अपने अभिप्राय के साथ पकड़ लेते हैं। देखो शास्त्र में आई, जैसे मेरी बात है ऐसे शास्त्र में आई, ये गलती हुई है। शास्त्र देखकर स्वयं की समझ को मिलान करने की पद्धति उचित नहीं है, क्योंकि इस पद्धति से स्वयं के अभिप्राय अनुसार शास्त्र वचन का अर्थ घटन समझ होने की संभावना है। ऐसे घटा लेते हैं कि जैसा मेरा अभिप्राय है ऐसा शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में ऐसा नहीं कहता हो तो भी उनको ऐसा लग जाता है, ये गड़बड़ी है। और इसमें जो भूल रही हो वो तो शास्त्र आधार से और दृढ़ हो जाती है। देखो और करीब करीब ये हुआ होता है, विमल चंद जी तो इतना उगड़ वाले थे इस गलती में आते थे, अपने बात को शास्त्र संग्रहण कर लेता, फिर वो आधार देते प्रेम कहते हैं तो वो ऐसा कहने कहना ही नहीं चाहते, जैसे तुमने अभिप्राय बना लिया ऐसा तो इधर तो नहीं कहते, इधर तो दूसरी बात चली है, ये हो जाता है। साथ ही ऐसी पद्धति से ज्ञानी के वचन भी शास्त्र आधार से स्वीकार करने का भी पहले रह जाता है, कि ज्ञानी के वचन शास्त्र का आधार मिलता है, गुरुदेव कहता है ऐसा शास्त्र में आता है, ये कहते हैं उसको शास्त्र में आता है कि नहीं आता है, दूसरा कहता है शास्त्र में मिलता है, श्रीमद जी कहते हैं लेकिन शास्त्र में आता है कि नहीं आता है, ये पद्धति भी उल्टी है बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे प्रत्येक सत्पुरुष के वचन पर प्रीति भक्ति और विश्वास नहीं रहता, विश्वास आता है शास्त्र से मिले तो हम सत्पुरुष का वचन माने, नहीं मिले शास्त्र में तो मिलता नहीं, शास्त्र में तो मिलता नहीं, वो कहते लेकिन शास्त्र में कहाँ मिलता है, विश्वास नहीं आता। युगल जी ने हमको ये प्रश्न पूछा था, बस क्या उसे हलचल कराई, देखो मैं तो हलचल करी ना कि पटना थी तो अठवाडियो नो टाइम हतो, हवे तो क्या टाइम छे, कहते कि गुरुदेव भावी तीर्थंकर सूर्य कीर्ति नाम के होने वाले वो शास्त्र में नहीं मिलता है, इनका पहले ही शास्त्र में नहीं मिलता है। गुरुदेव की वाणी में आपको सुनना है तो अभी टेप में सुना दो, गुरुदेव की आवाज आप पहचानते हो, अभी सुन लो, अब गुरुदेव के मुंह से सुनने के बाद आपको और शास्त्र का आधार चाहिए क्या, उनके वचन पर विश्वास है या नहीं है, क्या सवाल है, मौन हो गया। वो तो वहां से बात उठे कि वैंसर के जाति स्मरण के आधार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैंसर के मत बीच में मत लाओ, खुद गुरुदेव कहते हैं इनकी वाणी में आप अभी सुन लो, और जब गुरुदेव कहते हैं तो फिर शास्त्र से मिलान करना बाकी रहता है या बात पूरी होती है, मेरा इतना ही सवाल, बात खत्म। कि जब ज्ञानी से मुखवास निकले फिर शास्त्र से मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं, यही शास्त्र है, दूसरा शास्त्र है ही नहीं।
शास्त्र से नहीं मिले इसका अर्थ ये होना चाहिए शास्त्र में उससे विपरीत बात नहीं हो सकती,
वही नहीं सकती,
लिखी हो
विपरीत नहीं हो सकती, और ऐसी बात नहीं भी हो जरूरी नहीं है,
हाँ है कोई नहीं,
जरूरी नहीं है कि ऐसी बात शास्त्र से मिलनी चाहिए, मैंने तो सब बोला कि गुरुदेव के वचन पर जिसको विश्वास नहीं है उन लोगों ने इसका विरोध उठाया है, और दूसरे कोई नहीं है, हमारे कहलाने वाले मनुष्य हैं कि जिनको इनके वचन पर विश्वास नहीं है। फिर चर्चा किससे किससे साथ करेंगे? गुरुदेव को मानते हो बात पूरी हो जाती है, नहीं मानते हो तो हमको तो कोई बात सुननी भी नहीं है, हमको ही नहीं सुननी है तुम्हारी क्योंकि तुम तो मानते नहीं हो, फिर हम तुम्हारी बात सुन करके आ चलेंगे, बात खत्म हो। इसलिए प्रत्येक सत्पुरुष के वचन पर प्रीति भक्ति और विश्वास कुछ नहीं रहता, अतः समझी हुई बात को अनुभव पद्धति से समझना चाहिए। जो विचार से समझी हुई बात है उसको अनुभव पद्धति से समझना चाहिए, और वैसे अनुभव को शास्त्र में मिलान करना ये सही पद्धति है, अर्थात उपादान की मुख्यता वाली पद्धति ही सही पद्धति है, निमित्त की मुख्यता वाली पद्धति सही पद्धति नहीं है। क्या पदम सिंह जी
बराबर
ठीक? ज्ञानी उत्पाद विवेक के साथ चला जाता है। ज्ञानी ने नित्य में या तो स्वभाव में अपना अस्तित्व स्थापित किया है, जिससे वह उत्पाद विवेक के साथ नहीं चला नहीं जाता, उत्पाद विवेक को जान लेता है। स्पष्टीकरण, ज्ञान दशा में उत्पाद व्यय रूप चलित भाव में अस्तित्व स्थापित रहने से स्वयं का अनित्य रूप ही अनुभव वर्तता है। पर्याय मात्र में हूं, पर्याय जितना ही में हूं, तो पर्याय अनित्य है, तो खुद का अनुभव भी अनित्य रूप ही रहता है। जबकि ज्ञान दशा में नित्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित होने से दोनों अंगों का एक साथ ज्ञान रहता है, जो दोनों का एक साथ ज्ञान रहता है तो बात ही सुना जाता है। जब नित्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया, और स्थापित किया तो पर्याय ने किया, स्थापित करने का कार्य पर्याय में हुआ, इसलिए दोनों का स्थापित करने वाले का और जिस और स्थापित हुआ ऊपर का दोनों का बराबर ज्ञान रहेगा।
खाली पर्याय भी स्थापित करता है गुरु,
पर्याय मात्र, पर्याय मुंडा पर समया, पर्याय जितना ही मैं हूं, जैसे सूक्ष्म पर्याय पकड़ने में नहीं आवे तो ये बात तो प्रसिद्ध है ना कि जो मनुष्य पर्याय पाई है उन लोगों को मनुष्य पर्याय का व्यय होने से क्या होता है, जब वो डेथ बेड पर आ जाता है मनुष्य, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई उम्र भी हो चुकी है और रोग का भी इतना जोर है कि उसका प्रतिकार न दवा से होता है न शरीर खुद करता है, अब तो उम्र भी हो गई है, आयु है इतना दिन वो रहेंगे बाद में तो कोई सवाल नहीं, उनको क्या दुख होता है? मेरी मृत्यु होगी, इनकी तो होती नहीं मृत्यु, लेकिन वो पर्याय जितना मैं हूं ये पर्याय समाप्त होने से मैं समाप्त हो गया, जैसे स्थूल पर्याय में होता है वैसे सूक्ष्म पर्याय में हो जाएगा समय समय।
उसके धर्म बाद में बहुत अच्छे कर्म थे, इसमें नहीं लिया है। एक आदमी जितना भी इसका कद है तो 1 फुट बाय 5 फुट हो तो 5 स्क्वायर फुट हो गया, 1 फुट ऐसा भी 5 क्यूबिक फीट हो गया, 5 क्यूबिक फीट जिसका वॉल्यूम है उसको 3 क्यूबिक फीट वॉल्यूम वाली कोई पेटी में या कोई ऐसा गोलाकार कोई सिलेंडर हो इसमें उसको जैसे तैसे ऊपर भी उसको पैक कर दो, 5 मिनट में क्या हालत होगी उसकी। इसका रेशियो तो 60% में आया, 5 फुट वाला 3 फुट या 2.5 फुट में जाता है तो 50-60% में वो सहन नहीं कर सकेगा। जैसे ट्रेन में कभी जगह नहीं मिलती है, बस में जगह नहीं मिलती है, जितना करो इससे कम मिलती हो, उस सारी रात निकालना हो कैसे अकुल पाते। अभी जिसका तीन काल में अनंत काल है, ऐसे जिनकी लंबाई चौड़ाई है उसको एक समय में पैक कर दो अनंतमय भाग में, 50% में नहीं अनंतमय भाग में उसको पैक कर लो। ये हालत मिथ्या तो उस समय हुई है, इसलिए आकुलता अनंती है। इसमें आकुलता अनंती क्यों है कि है तो उतना फोला लंबा कि उसका अस्तित्व है वो अनादि अनंत, उसका अस्तित्व है उसको एक समय में महसूस करते हैं अवस्था में, मैं तो उतना ही, क्या हालत हो तो उसको कितना बनना पड़ता है, अनंतवा भाग में रहना पड़ता है। वास्तविक ऐसे है नहीं, अस्तित्व की ऐसी वास्तविकता नहीं होने पर उतने भी अस्तित्व को ग्रहण करा तो कितने आकुलता होगी। ये दृष्टांत है फिजिकल जो एरिया है उसका है, और ये भावात्मक है, बस दृष्टांत सिद्धांत में उतना ही फिर है।
छता आकुलता
नहीं लगते एन और केवल तक घटाव से કે એટલું દુઃખ સહન કરે એટલી બધી એની શક્તિ છે, સહન કરવાની શક્તિ પણ એની બે હાથ છે, બીજું જે દુઃખ જે જીવ સહન કરે છે એ દુઃખથી એ ટેવાઈ જાય છે। જેસે બોડી સિટી મેં જ્યાં ગટર કા ડિસ્પોઝલ હો વહાં ભી લોગ રહેતે હૈ ઝુંપડપટ્ટી મેં, બમ્બઈ મેં તો નજર આતા હૈ धारावकी से धारावकी झुपड़पट्टी है, वर्ली वाली है, बांद्रा की है, वहां से अपन बाय कार निकलते और कुछ सेकंड तक वहां से पसार होते तो नाक को बंद करना पड़ता है और वो रात दिन वहां रहते हैं, वहां रहते हैं। इस गटर में से जो जीव होते हैं चित्र विचित्र, जो देखने से शहर के आदमी तो डरने लगे, और हमेशा वो सोते हैं वो आते रहते हैं, उनको कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल लगता है। जो जिसका परिचय जिस परिस्थिति का हो जाता है लंबा वो सब नॉर्मलाइज हो जाती है। जैसे डॉक्टर है ऑपरेशन करता है, थोड़ा भी खून है वो आम समाज का आदमी देख नहीं पाएंगे, देखने से उसको भी लगेगा इतना खून निकल गया उसको, इतना खून बहता है ये लगेगा, खून देखते ही उनकी साइकोलॉजी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर क्या क्यों उसने कई सालों तक ये करता रहा देखता रहा, उसको जैसे कुछ है ही नहीं, तो जो भी परिस्थिति की आदत बन जाती है उसमें कुछ नहीं लगता है। जैसे अनंत आकुलता में अनंत काल से चलते हैं, बस कुछ नहीं होता। समाज में भी एक स्तर के जीवन सभी के तो होते ही नहीं। यहाँ पर देखते पावापुरी में लोग कैसे रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते और हम भी रहते हैं और हमारे से भी आगे रहने वाले हैं। हम लोगों को तो नॉर्मल लाइफ होगी, हम लोग को मच्छर काटते तो हम ये लगाते वो करते वो करते, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं है साथ में। मतलब ये लगे कि मच्छर काटेगा तो कुछ ना कुछ डिजीज चालू हो जाएगा, जैसे मलेरिया वगैरह के मच्छर से ही होता है। उनको तो बारह मास ही स्थिति है, कुछ नहीं होता है। जानवरों को क्या होता है, उनको रोग होता है कौन डॉक्टर को बुलाता है, क्या जानवर को रोग नहीं होता क्या, होता है न तो डॉक्टर आता है न दवाई आती है, उसका उदय चालू होता है उदय पूरा होता है, बीच में न डॉक्टर आता है न दवाई आती है। उनकी आदत बन गई, कुछ नहीं लगता। अपने तो इच्छा के अनुकूल एक बात नहीं बनती है तो दिमाग खराब हो जाता है सारे दिन। पर्याय में तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो, शुद्ध लिया शुभ नहीं लिया शुद्ध परिणाम हो, मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। त्रिकाली तो है उसमें पांच नहीं, उसकी न शुद्धता की न अशुभ की। पर्याय में कितना भी फेरफार हो लेकिन द्रव्य तो होता है, इसलिए ध्रुव नित्य स्वभाव को स्वभाव के आगे किसी भी पर्याय की प्रकार की क्षणिक अनित्य पर्याय का मूल्य नहीं है। वह अभिप्राय क्या है इसमें इस स्पष्टीकरण में निकाला है। तो परिणाम को तुम तुल मत दो, उसका मूल्यांकन करने से उस पर वजन रहेगा। एक तो अनादि से पर्याय दृष्टि है, दूसरा शास्त्र के आधार से या उपदेश के माध्यम से वही परिणाम का मूल्यांकन करने लगे। तो ऐसे मां से वजन उठने का नहीं, इसका मूल्य ही नहीं करो। जैसे एक चीज अनेक लोगों के पास होती है तो इसका मूल्य नहीं आता है, आपके पास है क्या है उसमें क्या हो गया। तो संयोग तो बहुत से लोगों के पास है, जैसे व्यवहार में तो पैसों की कीमत है, जो पाश्चात्य देशों में देखो पापी बहुत पापी प्राणी होंगे मनुष्य होंगे तो भी इसके पास पैसे क्या इसकी कीमत, इस नजर से देखो तो कोई कीमत ही नहीं लगेगी कि इसमें क्या है, क्या करेगा, मेरे पास है इसके सिवा कुछ नहीं करेगा, कर सकता चला जाएगा, पर यह पूरी होने के बाद चला जाएगा।
नीचे की तरह रह जाएगी। स्वभाव के आगे क्षणिक पर्याय का मूल्य क्या, बस उतना अभिप्राय है इसका। अपने द्रव्य दृष्टि का तादात्म होते ही ज्ञान प्रमाण हो जाता है। ऐसे प्रमाण हुआ ज्ञान सभी बातें जान लेता है। ज्ञान की प्रमाणता कहां से हुई? सामान्य विशेष की जानकारी कर ली इसलिए ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ। ज्ञान की प्रमाणता दृष्टि से ले ली, तो दृष्टि सम्यक हुई द्रव्य में तादात्म्य वाली ज्ञान प्रमाण। इसके पहले कैसा भी ज्ञान हो है प्रमाण है, प्रमाण नहीं है। स्पष्टीकरण, अपनी आंशिक शुद्धि अशुद्धि और इनके निमित्त आदि सभी के प्रमाण ज्ञान जान लेता है। प्रमाण ज्ञान में अशुद्धि शुद्धि निमित्त और त्रिकाली सब आ जाता है। नित्य अनित्य, अनित्य में शुद्धि अशुद्धि दोनों आती है। साधक दशा में जितनी शुद्धि आई जितनी अशुद्धि बाकी रही, अशुद्ध के निमित्त कौन है कब, सबको प्रमाण ज्ञान जान लेता है यथार्थ रूप से, कोई गड़बड़ी नहीं होती। पांच सौ छब्बीस, उल्लास में उल्लास आ जावे वह योग्य नहीं। उल्लास में रस, रस का रस ले ले रहे तो रस तीव्र हो जाएगा, गाढ़ हो जाएगा। रस आवे और निषेध हो जावे ये रस चलने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं।
काले की प्रति उल्लास आया हो
यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो राग रस की बात चल रही है। देखो स्पष्टीकरण में लिया है, राग होना वो उतना अपराध नहीं है जितना कि राग का राग होना या राग में रस होना, क्योंकि राग का राग अनंत आनंद का कषाय है। ये तो उल्लास मतलब किसी न किसी प्रकार के राग में उल्लास होता है ना, वो बात है, वो बात नहीं है। वो जो स्वरूप प्रत्यय उल्लास है ना उसको तो दूसरे शब्द में पुरुषार्थ कहते हैं, वो राग रूप नहीं है, वो तो आत्मा का परिणमन है, शुद्ध परिणमन है।
लेकिन ऐसे स्वरूप के प्रति विकल्पात्मक जो उल्लास है वो तो उचित नहीं,
नहीं। विकल्पात्मक राग का राग नहीं होना चाहिए। देखिए कि जिसके ज्ञान में स्वरूप हो उसको ज्ञान में उल्लास आएगा पुरुषार्थ का, और साथ राग में राग का राग उल्लास दिखेगा, लेकिन उसका वजन दृष्टि राग पर नहीं है तो उसको राग को उसका राग को उत्तर ना करेगा तो उसको ये लगेगा कि मुझे मुझे भी ऐसा ही उल्लास आता है या इससे भी ज्यादा आता है। जैसे
मंदिर जी में ज्ञानी भी भक्ति करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं, और ज्ञानी के राज में उल्लास भी है, लेकिन उनको स्वरूप क्या है वो दिखता है। तो ज्ञान के कारण से उल्लास है, राग के कारण से नहीं। तो जिसको भगवान का स्वरूप का तो पता नहीं, और अकेला राग से उल्लास आता है, उल्लास कैसे नहीं समझेंगे।
इसलिए अपने काम करने का बहुत हर्ष है, गौरव भी जान लिया है, अपने काम करने का बहुत हर्ष है, हर्ष में उल्लास नहीं है।
अपना हित करने का जिसको उल्लास होता है, तो इस भूमिका में ये राग जिसको अनादि से अपना काम हित करने का उल्लास नहीं आया, उसको जो पहला उल्लास आता है उसको यथोचित माना जाता है कि ठीक है चलो। जैसे दर्शन परिसर और ज्ञान परिसर में द्वेष होता है, सम्यक दर्शन पर होने के पहले उसको वेदना होती है, तो ये तो द्वेष के परिणाम है, लेकिन वो यथोचित है, इस भूमिका में होनी जरूरी है। ऐसे तो दृष्टिकोण तो अलग अलग है ना, उसमें वहां कोई बात नहीं।
अपने काम का अपना काम करने का जो उल्लास है उसमें राग कहाँ है, वो राग में से भावना थोड़ी उठी है, वो तो चैतन्य में से भावना उठी है।
ठीक है, अंतर में से आई वो बात तो अच्छी है, उसमें क्या है भी? दलील ऐसे आती है कि समय दर्शन नहीं हुआ है तो सुबह में
देखने का चश्मा ही दूसरा है, तो उसका भाई
ये अकेला स्वभाव नहीं, इसका दर्शन मौके मिलता है, आत्मरुचि है उसमें करने का उल्लास आया तो उसमें आत्मरुचि है, अकेला राग नहीं है। राग की जिस पर दृष्टि हो राग को ही देखता है, हर जगह राग को ही पकड़ता है, देखो ऐसा राग हुआ।